आदरणीय भाई जी, जिनसे आज हम सुनेंगे, जो आज की मुरली में भी था, मैंपन का त्याग हम कैसे करें, तो हम सुनते हैं आदरणीय भ्राता जी से। भ्राता जी हमें क्लास भी कराएंगे और 7 बजे तक योग भी कराएंगे।
ओम शांति। बाबा के इस तपस्वी भूमि पर चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि, विशेष मधुबन पांडव भवन, उसमें भट्टी का पहला चांस सीजन में आपने लिया है और इतना सुंदर मौसम वातावरण आपको मिला है, ऐसे लगता है जैसे फरिश्तों की दुनिया में आ गए, ऐसा है ना। बादलों के बीच, रिमझिम के बीच तपस्या का अपना ही आनंद होता है। जब तपस्या कहते हैं तो तपस्या के लिए त्याग की जरूरत तो होती ही है, बिना त्याग के तपस्या नहीं होती। त्याग और तपस्या ही हमारी सेवाओं का आधार है, वैसे भाग्य का आधार भी त्याग ही है। अगर कोई का भाग्य बहुत ऊंचा दिखाई देता है तो उसके पीछे उसका बलिदान है, त्याग है, कुछ न कुछ उसने त्याग किया है तब तो इतना ऊंचा भाग्य बना। ऐसे ही अगर कोई का योग अच्छा है, तपस्वी जीवन है, तो उसके पहले उसने त्याग किया है। लेकिन दुनिया वाले हमारे त्याग को जब सुनते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, समझते हैं शायद ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो हम कई प्रकार की सोशल से टूट जाएंगे, एक्टिविटी जो सोशल एक्टिविटी होती हैं, शादी ब्याह में जाना, वहाँ पिकनिक करना, खाना पीना, रंगीन ड्रेस पहनना, फैशन करना, और फिर खास तो हमारे जीवन की जो मूल धारणा है पवित्रता की, उस पवित्रता को अपनाना, घर गृहस्थ में रहते हुए निर्विकारी जीवन जीना, लोगों को लगता है ये तो इनका बहुत बड़ा त्याग है। और सवेरे सवेरे जब सोने का समय, अच्छी नींद आती है, उस समय उठ करके योग करना, तो लोगों को थोड़ा सा त्याग दिखाई देता है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपके जीवन से त्याग न दिखाई दे, भाग्य दिखाई दे। ये जो बातें हमने त्याग की हैं उससे हमारा कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बना है वो आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। अगर हम अमृत वेले शुद्ध पवन में उठते हैं, थोड़ा सा सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाबा को प्यार से याद करते हैं, तो तन और मन दोनों शक्तिशाली बन जाता है। सुबह सुबह की शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शक्तिशाली, परमात्मा की याद से, उनकी शक्तियों का अनुभव करने से हो जाता है। तो जब हमारे तन और मन को सभी स्वस्थ देखते हैं तो कहते हैं हाँ, ये उनका भाग्य है। ऐसी दुनिया में, ऐसी समस्याओं के बीच में, इन लोगों के चेहरे पर, इनके हाव भाव में वो भय नहीं है, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, तब उनको लगता है कि बहुत इनकी श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन है। तो जो कुछ भी त्याग लोगों को दिखाई देता है वो हमारे भाग्य के आगे बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ भाग्य संगम युग पर भगवान ने हम सबको दिया है, नशा रहता है ना, खुशी रहती है ना। अगर सफेद ड्रेस पहनी है तो कई प्रकार के चर्म रोगों से बच गए, क्योंकि सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ उसमें अगर दाग लग गया कहीं कुछ, तो उसको धोना ही पड़ेगा, साफ ही करना पर कलर ड्रेस तो चल जाती है दो चार दिन में। तो इसलिए कोई भी चीज जो बाबा ने नियम बताए मर्यादाएं बताई यथार्थ रीति से विधि पूर्वक अगर हम उसको पालन करते हैं तो त्याग नहीं दिखाई देता लेकिन लगता है इससे बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे ही जब हमारी तपस्वी जीवन है तो त्याग है देह विमान का, वस्तुओं का साधनों का सुविधाओं का त्याग नहीं है, वो इच्छाओं का त्याग है। सब साधन सुविधाएं हैं लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते नहीं है। यहां पर त्याग है देह विमान का जो सबसे बड़ा त्याग है। तपस्या है आत्म अभिमानी बनने की, त्याग है देह अभिमान का जिसमें एक एक कर्मेंद्रिय, जब हम देह अभिमान कहते हैं तो देह अभिमान के अंदर सभी कर्मेंद्रियां देह के अंदर आ जाती हैं। एक एक कर्मेंद्रिय शीतल बन जाए, कोई भी उत्तेजनाएं उसके अंदर न रहे, अभिमान का अंश न रहे। जहां पर भी मैं आता है वो मैं परिवर्तन हो जाए। तो बाबा ने हम सबको इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको अगर हम देखते हैं कैसे इस यज्ञ की इतनी सेवाएं करते हुए इतना विस्तार करते हुए कभी भी उनके बोल में हाव भाव में मैंपन नहीं आया। इतनी त्याग वृत्ति से मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं करता। अभी दादी जी का मास चल रहा है इसलिए दादी जी से ही शुरू करते हैं। आज भी सुना दादी जी की विशेषता के अंदर, इतनी निमित्त भाव से करामनहार करा रहा है, मैं क्या करती हूं, मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है। कभी भी बोल चाल में भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब पत्र भी लिखवाती थी तो दादी का ये विचार, इसे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, दादी का ये विचार है, मेरा ये विचार है, मैं ये कह रही हूं, उन्होंने इस मैं शब्द को ही कभी प्रयोग नहीं किया। इतना निमित्त भाव से निरहंकारी बन करके रही जिसके आधार से हम देख रहे हैं सारे संगठन को उन्होंने एक बना दिया। नहीं तो इतने सब बाबा के अव्यक्त होने के बाद लोगों ने समझा था ये संस्था भी टूट जाएगी क्योंकि बाबा चला गया, इनका हेड चला गया, उनको क्या पता बाबा तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो बैक में है। लेकिन जो बाबा ने निमित्त आत्माओं को आगे रखा उनके अंदर इतनी नम्रता इतनी निर्माणता, सब कुछ सहन करके सबको सम्मान दे करके सबको अपने से आगे बढ़ा करके, कभी मैं बड़ी हूं, मैं हेड हूं, मैं संस्था की मुखिया हूं, लास्ट में दादी जानकी क्या कहती थी, मैं हेड नहीं हूं, मैं दादी नहीं हूं, दादी तो दादी थी। इतनी नम्रता इनके अंदर दादियों के अंदर रही, कभी भी अपने पद का पोजीशन का दिखावा नहीं किया। दुरुपयोग तो बहुत बड़ी बात है, दुरुपयोग तो होता ही नहीं, दिखावा भी नहीं था कि मैं बड़ी हूं। इतनी नम्रता के साथ जब हम लोग शुरू शुरू में आए सिखाने के लिए, हम जानते हैं संस्था की हेड हैं मुखिया हैं, लेकिन जैसे हम कोई कार्य कर रहे तो साथ में आके करने लगना, खड़े हो जाना, ये नहीं सोचते दादी करवा रही, साथ में खड़े होकर के। एक छोटी सी बात सुनाता हूं शुरू शुरू में मधुबन की। यहां पर सभी जो चारपाई थी ना हमारी, वो सब निमाड़ वाली थी, सूती, अभी तो नायलॉन वगैरह की आ गई है, वो सूती निमाड़ वाली चारपाइयां थी। और इस बरसात में जब सीलन होती है तो उसमें खटमल हो जाते हैं बहुत सारे, तो जब बरसात पूरी होती थी तो दादी कहती थी सब चारपाइयां खोलो, सब निवाड़ निकालो और उसको बहुत सोडा में गर्म पानी में रात भर पका करके उसकी बिल्कुल सफाई करके उसको सुखा करके फिर गोला बना करके फिर से चारपाई बुनो। तो मुझे वो दृश्य याद आता है, ये सेवा हमने शुरू शुरू में की दादी के साथ। दादी खुद ये जो शांति स्तंभ का आवास निवास विभाग का ऑफिस है उसके आगे एक चारपाई मैं बुनने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बिल्कुल नया था, छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं था कैसे बुनना होता है। दादी आगे कहती चल खड़ा हो जा मेरे साथ, और पूरा टाइम पूरी चारपाई उन्होंने मेरे से बुनवाई। खुद एक तरफ खींचती थी और जो लगाओ और जो लगाओ और खींचो। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी हेड, इतनी बड़ी संस्था की मुखिया काम क्या कर रही थी, चारपाई बुन रही थी। जरा भी अहंकार नहीं, जरा भी मैंपन नहीं, मैं बड़ी हूं, ये तो आज के लड़के हैं, इनके साथ मैं ये काम करूं मिलकर के, नहीं। सब काम में हम लोग यहाँ पर सिस्टम के अनुसार, मधुबन में जब भी कुछ अनाज आता था, गेहूं आया तो उसकी धुलाई जरूर करनी है, ऐसे नहीं पीसेंगे। तो धुलाई करने के लिए शांति स्तंभ पर बोरियां ले जाते थे, वहां डालते थे धो करके। और अचानक अगर बादल आ गए रात को तो दादी तो खड़ी हो जाती थी आकर के, सीटी मारती थी जोर से, आ जाओ सभी पांडव, और खुद साथ में लग जाती थी, क्यों मजदूर तो थे नहीं। और रात में 12 एक दो बजे अगर गेहूं उठाने हैं समेटने हैं तो सब के सब देखो सब लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, स्थूल सेवाएं, सब सेवाएं स्थूल ही थी। और इन लोगों को दादियों को कभी ये भान ही नहीं आया कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी एज वाली हूं, मैं हेड हूं। मैंपन का अंश मात्र भी उनकी चलन में नहीं दिखाई दिया। सबको साथ लेकर के चलना है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, ये प्रैक्टिकल उनके मैंपन का त्याग था। इसलिए कोई भी स्थूल छोटी मोटी सेवाएं जो यज्ञ में पहले पहले चली हैं, हुई हैं, उस सभी सेवाओं में दादी जी ने सबसे आगे रह करके पार्ट बजाया। दीदी थोड़ी आयु में बड़ी थी और दीदी कंट्रोलर थी, सब्जी वब्जी काटने में मदद करती थी, वो भी आके बैठ जाते थे, सब्जी काटनी है अनाज साफ करना है तो आ जाते थे बैठ जाते थे। लेकिन दादी थोड़ा मजबूत थी शरीर से भी, कुमारी थी और यंग थी। तो दादी ने हम लोगों के साथ हर प्रकार की सेवाएं की, छोटी बड़ी, सिखाने के लिए खड़ी हो जाना करना। तो उनकी नम्रता से निर्माणता से यज्ञ का कोई भी कार्य कह करके कराया जाए उसकी बजाय उन्होंने करके सिखाया, एक एक चीज आगे बढ़ाया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो हमने शुरू से दादी जी को देखा, उनकी चार विशेषताएं मैं आपके आगे रखता हूं। सबसे पहली, शुरू से ही एक बहुत भान दिखाई देता मैं निमित्त हूं। कभी कोई ने अगर महिमा की तो ऐसे आंख दिखाते थे, क्या मैं दादी कुछ करती, दादी कुछ नहीं करती, करण करामनहार बाबा है, तुमको दिखाई नहीं देता है, वो मेरे सिर पर है, मेरे कंधों पर है, वही सब कुछ करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती, मुझे क्या पता है, क्या अनुभव है मुझे यज्ञ का, इतने सब भाई बहनों की पालना करना, इतना सब प्यार से मुरली सुनाना, इतनी सब सेवाएं कराना। ओम शांति भवन जब बनाया है, जो पुराने हैं जानते हैं, रोज शाम को 4 बजे 3:30 बजे कहेगी चाय बनाओ वहीं रखो, कोई चाय पीने इधर भंडारे में नहीं जाएगा, सब चलो चाल पर चलो, पत्थर तोड़ने के, और खुद हथौड़ा लेके खड़ी हो जाना, खुद तोड़ने शुरू कर देना साथ में। तो सब भाई दौड़ के लगे आते थे, सब कार्य में पत्थर तोड़ना है, फिर उठाना है, मिट्टी साफ करनी है, चाल बनानी, मतलब जो कार्य था दादी खुद करके आगे रह करके हम सबसे करा करके यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाया। ओम शांति भवन में जो वाइब्रेशंस हैं अभी तक भी हैं, वो शांति के तो हैं, यूनिवर्सल पीस हाल तो है, लेकिन वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत खुशी का, आनंद का, प्यार का अनुभव करता है। कोई कहे या न कहे, कोई अज्ञानी भी ऐसे आ जाता है तो उसको बड़े अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। कारण इसमें सबकी एक एक की खून की बूंद लगी है, मेहनत की, पसीना, खून पसीना कहते हैं ना, इसलिए वहां के वाइब्रेशन ऐसे बन गए। तो दादियों ने बहुत यज्ञ को नम्रता के साथ, निमित्त भाव के साथ चलाया। इसलिए मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है, वो करा रहा है और उसको इस यज्ञ को संपन्न करना ही है, आगे ले जाना है। इस भाव से दादियां कभी अथॉरिटी बनकर के उनको आर्डर नहीं किया किसी को, ये करोगे, कर सकते हो, ये शब्दों का प्रयोग नहीं, करना ही है। शब्दों में भी अंतर आ जाता है, कोई अथॉरिटी वाला है नहीं, आपको ये करना है, और दादी कभी नहीं कहेगी आपको करना है, आप ये कर सकते हो, मदद करोगे, इसमें लगोगे, ऐसे सबको साथ लेकर के, सबको सम्मान दे करके, हर चीज में, छोटी बड़ी जो भी कारोबार आई, दीदी तक तो 83 तक दीदी कंट्रोलर थी, इसलिए दादी थोड़ा सा कंट्रोलर के कारण दीदी को कहती, दीदी आप ही सबको हैंडल करो, जो भी डायरेक्शन देना है, जो भी कार्य कराने हैं, दीदी आगे आती थी। दादी थोड़ा बाहर की सेवा में अधिक रहती थी, लेकिन जब दीदी अव्यक्त हो गई तो दादी के ऊपर पूरी जवाबदारी आ गई हर प्रकार की, क्योंकि जानकी दादी को सहमुखी प्रशासिका बनाया, लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्ची इसको यहां नहीं रखना है, ये विदेश में ही रहेंगे। आपके साथ चंद्रमणि दादी रहे, मनोहर दादी रहे, शांतामणि दादी रहे, ये सहयोगी हैं, लेकिन जानकी दादी को विदेश में ही रहना है। तो जानकी दादी वहां से रह करके सहयोग देती थी, भट्टियां होती थी तो वहां से आ जाती थी भट्टी कराने, लेकिन अधिक समय विदेश में रहते। तो दादी जब अकेले हो गई एकदम, मतलब दीदी के जाने के बाद सारी जवाबदारियां दादी के ऊपर आ गई, और उसके बाद उनकी प्लानिंग कैसे, एक के बाद ओम शांति भवन के बाद फिर हॉस्पिटल बनने लगा, हॉस्पिटल के बाद फिर ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, ज्ञान सरोवर के बाद फिर शांतिवन का निर्माण हुआ, फिर मनमोहिनी वन बना उनके ही अध्यक्षता में, उनकी ही प्रेरणा से एक के बाद एक डेवलपमेंट होती गई। तो दादी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, करण करावनहार बाबा है, उसका ये कार्य है, मैं तो निमित्त हूं। इसलिए अहंकार का जरा भी कहीं अंश भी दिखाई नहीं देता था, नम्र चित्त निर्माण चित्त बन गई। नम्रता एक हमारे लिए सुरक्षा कवच भी है। कई प्रकार के लोग हैं जिनके संस्कार बड़े कड़े होते हैं, इतनी जल्दी उनका अभिमान टूटता नहीं है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई पैसा देते हैं, कोई सहयोग देते हैं। आजकल मैं कई जगह पर जाता हूं, देखता हूं, कोई अगर मकान बनवा लेता है, सेंटर को सहयोग देता है, तो उसके बाद बहनों को अपने अंडर रखता है, उनके उनको कहेगा ये करना ही है, ये होना ही चाहिए, आर्डर चलाता है, क्योंकि मैंने ये सब सहयोग दिया है। वहां सूक्ष्म में भले कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं, किसी के आगे बताएगा नहीं, लेकिन सूक्ष्म में अभिमान दिखाई देता है कि ये लोग यज्ञ के लिए, बाबा के लिए भले करते हैं, सब कुछ किया है कईयों ने, लेकिन देखने में आता है कि इनका अपना वो रहता है कि मैंने किया है तो मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ये मैपन चलता है, और उसके कारण बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे विघ्न आते हैं जहां पर कोई एक व्यक्ति को निमित्त बना दिया जाए। इसलिए बाबा ने एक पद्धति बनाई, एक नियम बनाया यज्ञ के अंदर, हर एक का थोड़ा थोड़ा भी सहयोग लगना चाहिए। कोई भी कार्य है, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप लेते हो हाथ में, तो उसमें हर एक का सहयोग होना चाहिए। कोई तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे। अगर एक ही व्यक्ति का पूरा सहयोग आ रहा है तो वो एक व्यक्ति कहीं भी अपना मैपन यूज करेगा और आपको अपने अंडर चलाने की कोशिश करेगा। इसलिए दादी जी ने कभी भी खुद भी मैपन यूज नहीं किया और किसी एक व्यक्ति के लिए कि यही करेगा, नहीं, सब करेंगे, सबका सहयोग, सबका साथ ये कार्य को संपन्न करेगा। तो हरेक को ये कहती है, सेंटर्स को भी यही डायरेक्शन था कि अगर कोई भी भवन बनाना है, कोई भी कार्य करना है, तो एक व्यक्ति पर आधारित नहीं रहना, वो आज तो सहयोग देगा, कल अधिकार रखेगा। इसलिए बहुत नम्रता का अवतार बन करके दादी रही और यही ट्रेनिंग दी कि जो भी कार्य करो सबके सहयोग से करो, कोई ये नहीं कहे मैंने ही किया है। वो मैंपन बहुत नुकसान करता है। इस मैंपन का त्याग हो जाए, जरा भी ना आए कि मैं कर रहा हूं। मुझे कभी कभी जब ये बायोडेटा ये वो बताते हैं, ये राजू भाई ने क्या ये किया, मैं कहता हूं भाई मैंने न सीखा है, न मेरे को कोई ऐसी डिग्री मिली है, न मैंने पढ़ाई की है। बाबा के घर में 10 साल 10वीं पढ़ करके यहां पर समर्पित हो गया और सारे विश्व को पढ़ाने की सेवा मुझे बाबा ने दे दी, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहां से सीख के आया हूं? अगर कोई कहे इन्होंने किया ही, मुरली सेठ इन्होंने ये भेजी है, तो शायद वो भाषना ही आपको नहीं आएगी और लगेगा कि नहीं ये बाबा के महावाक्य नहीं है, इसके बीच में कोई ने राजू भाई ने मिक्स कर दिया है। कभी भी नहीं आया कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, कराने वाला बाबा करा रहा है। एक बहुत सुंदर अनुभव मैं आपको बताता हूं। कोई भी कार्य करने जब बैठता हूं, है तो बहुत जवाबदारी की सेवाएं, इतने बड़े विश्व को सबको ठीक तरह से समय पर मुरली मिल जाए, वही महावाक्य जो हम यहाँ सुन रहे हैं वो एक विश्व के कोने में बैठा हुआ, एक छोटे गांव में बैठा हुआ भी सुने, उसी दिन सुने, तो थोड़ी जवाबदारी है। लेकिन ये जवाबदारी भारी करने वाली नहीं, बहुत हल्का बनाने वाली है। सिर्फ ये स्मृति रहती है कि मैं कहीं अलबेला न रहूं, कहीं भूल न जाऊं, बाबा मेरे कुछ समय पर यूज कर ले। और उसके लिए बहुत सरल नेचर से, एकदम इजी भाव से बाबा को यही कहता हूं कि बाबा आप बैकबोन हो हमारे, और बैकबोन के बिना ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। अगर बैक खराब हो जाए किसी की, बैक में डिस्टरबेंस हो जाए, तो शरीर क्या करेगा? तो आप बैकबोन हैं, और बैकबोन बन करके जो आपको कराना है, मैं आपका सिर्फ राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं, आप मुझे यूज करो जैसे करना है। और मैंने देखा है कि बाबा अपने आप सब कुछ करने वाला, कराने वाला, इतने बड़े यज्ञ को चलाने वाला है। कोई व्यक्ति अगर चला रहा होता तो एक के जाने के बाद वो कार्य रुक जाता। आप अनुभव कर सकते हो, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने कैसे सेवाओं को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया। कहीं भी रुकावट नहीं है कि बाबा चले गए तो कार्य रुक गया। भले बाबा गए नहीं, वो तो अव्यक्त रूप में बच्चों के साथ हैं, लेकिन लोगों को तो लगता है कि बहनों ने संस्था को आगे बढ़ाया, और बहनें इतनी निर्माण चित्त, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, बाबा करा रहा है, वो बैठा पीछे बाबा के साथ। फिर दादियों ने जिस प्रकार से नम्रता से निरहंकारी बन करके सबका सहन करके सुन करके, संगठन जहां होते हैं वहां तो बातें तो होती ही हैं, कुछ न कुछ लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, उनके सबकी बात को सम्मान देना। और वही सम्मान दे सकता है जो अंदर से बहुत निर्माण चित है। निर्माणता ही सम्मानता दिला सकती है, सबको सम्मान दिला सकती है। तो हमने देखा कि दादी जी ने इतना सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ाया, अपने से भी आगे रख करके चले। तो मैं बता रहा था कि जब बैठता हूं तो ऐसे सोचता हूं कि बाबा आप तो करावनहार हैं, और आपके बच्चे हैं, मेरे को तो कोई संबंध नहीं है। हमारे भाई बहने हैं ठीक है, लेकिन 10 लाख से भी अधिक परिवार, 140 देशों में आपके बच्चे, उनको क्या आपको भेजना है, क्या वरदान देना है, क्या बोलना है, आप ही लिखवाओ, मैं क्या करूंगा। पहले थी दादी जी साकार में जब थी, तो दादी जी को बहुत प्लानिंग आती थी, रोज कहती थी आज मुझे बाबा ये कहता है, आज मुझे बाबा ये कहता है, तुम ये लिख के भेजो, तुम ये लिख के भेजो। लेकिन दादी 2007 में अव्यक्त हुई, 2004 से ही उनका पार्ट चेंज हुआ। दादी के पास कभी कभी मैं जाता था, बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलने लगी थी, चुप हो गई थी, आंख बंद कर लिया था। लेकिन मैं अकेले पहुंच गया दादी के पास, तो दादी जरूर कहते थे अच्छा कुछ काम है, बहुत प्यार से कुछ काम है, हाँ दादी ये करना ये करना, इशारे में दो शब्दों में उत्तर दे दे, ऐसे कर लो जा। कैसे करूं। उसके बाद दादी अव्यक्त हुई, जानकी दादी आई। जानकी दादी ने कहा जैसे तुम लोग पहले करते थे वैसा सब पहले से अच्छा करो, कोई बात पूछनी है तो मेरे पास आना, मेरा और कोई नया डायरेक्शन आपके लिए नहीं है। इतनी नम्रता के साथ कि मैं कोई मुखिया नहीं हूं, मुखिया तो हमारी दादी थी, वही मुख्य प्रशासिका थी, वही बड़ी थी, आपको उन्होंने ट्रेंड किया है, उनके सिखाए अनुसार आप कर रहे हो, ऐसे ही करते चलो। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय की मुख्य हेड, संस्था की हेड, इतनी बड़ी ब्राह्मण परिवार की सिरमौर, वो आत्माएं कितनी नम्रचित बन करके रही, जरा भी मैंपन का अंश नहीं रखा। और कोई भी सेवा करो तो सेवा को स्वीकार कर लेना, सम्मान दे देना, करेक्शन नहीं, कट नहीं करना, ये संगठन को लेकर के चलने की बहुत अच्छी नेचर थी। कि मान लो आज में कोई कार्य, कोई चीज लिख करके ले गए और दादी को बोला दादी ये लिखा है मैंने, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, उसको सम्मान दिया। और अगर कुछ करेक्शन करनी भी हो तो बाद में कि मेरे विचार से इस स्थान पर ये चीज लिख दो तो अच्छा है, ये है बहुत रिस्पेक्ट की भावना। हम लोग कोई भी पत्र लिखते तो उनके नाम से ही है, तो लिखेंगे तो जरूर कहेंगे दादी आप पढ़ तो लो। अब पढ़ने के लिए अगर मान लो दादी जानकी कहीं भी दुनिया के कोने में है और मैंने मेल भेज दिया, तो 15 मिनट के बाद मेल पहुंचते ही पहला काम उनका वो था, तुरंत पढ़ेंगी, पढ़ करके आवाज में भेजेंगी कि तुमने ये लिखा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद मेरा विचार इस चल रहा था कि ये भी अगर ऐड कर दो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से उनकी निर्माणता, नम्रता, ये नहीं ये तुमने क्यों लिख दिया, ये मेरे नाम से नहीं लिखना चाहिए। तो हम देखते रहे कि दादी जी हैं, दादी जानकी जी हैं, गुलजार दादी को देखा ही है सभी ने, लेकिन ये आत्माएं कितनी एकदम निरहंकारी, नम्रचित बन करके रही, वाणी कितनी निर्मल रही। तो चार विशेषताएं मैं बता रहा था, एक निमित्त भाव, एक नम्रचित, एक निर्मल वाणी, और एक सदा इसी स्थिति निर्वाण में जाना है, वाणी से परे जाना है। कभी दादी के सामने, जानकी दादी कम सुनती थी ना, जोर से कोई बोलता था तो ऐसे देखती थी क्यों जोर से बोलता है, वाणी में क्यों आता है, अभी निर्वाण में जाने का समय है। तो ये चार बातें प्रैक्टिकल जीवन में इन आत्माओं ने धारण कर ली और उसके कारण सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ाते हुए यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम सभी भी इन्हीं के कदमों पर कदम रख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा तो साकार में है ही हम सबके आगे, एग्जाम्पल हैं, बाबा कहता सी फादर फॉलो फादर, लेकिन जिन्होंने उनके फुट स्टेप पर स्टेप रखे हैं हम सभी भी उसको फॉलो करते चले। इतने निरहंकारी बन करके जरा भी कहीं सूक्ष्म में भी मैंने किया है, मैं करता हूं, पता चलना चाहिए लोगों का। कई लोग तो केवल अपना दिखावा करने के लिए सेवा करते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, करेंगे कुछ नहीं लेकिन कहें ये किया है मैंने, ये किया है मैंने, ये किया है। और बाबा ने इस यज्ञ को जो चलाया है, किसी का भी न नाम है न उसका। दीदी की एक बात सुना देता हूं, शुरू शुरू में जब दीदी ने मेरे को कहा कि तुम जो भी क्लासेज होती हैं दादियों की, संगठन होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, तुम बैठो इनके बीच में और सबका लिख करके ले आओ, लिखो सबका, फिर सब सेंटर्स पर भेजना। तो मैं सब दादियों के बीच में कोने में जाके बैठ जाता था और जो उनकी वर्कशॉप चलती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उस समय था नहीं, तो जो भी उनकी वर्कशॉप या क्लासेज होती थी तो मान लो आज मनोहर दादी ने ये सुनाया, निर्मल संता दादी ने ये सुनाया, बड़ी दादी ने, प्रकाशमय दादी ने ऐसे सुनाया, जानकी दादी ने ऐसे सुनाया, जो सुनाया वो मैंने अलग अलग लिखा और उसके ऊपर नाम लिख दिया कि भाई जानकी दादी ने ये सुनाया है, प्रकाशमय दादी ने ये सुनाया है। तो दीदी मुझे कहती थी, इधर आओ, ये जो सुनाया है ये किसका सुनाया है, अपना सुनाया है क्या? सबने बाबा का सुनाया है। एक नामी, केवल एक का नाम होना चाहिए कि भगवानों वाच्य है। हाँ, दादियों ने आपस में अपनी अनुभव, अपने विचार रखे, ये हेडिंग दो, बाकी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखो। किसी भी क्लास के ऊपर, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर दीदी ने एक का नाम नहीं लिखने दिया। इतना एक नाम है, केवल एक बाबा का नाम होना चाहिए। अगर कोई आत्मा के विचार बड़े अच्छे हैं, आजकल तो सबका नाम रोशन हो गया, YouTube में सबका नाम आ गया, भाई राजू भाई ये क्लास कराया, सूरज भाई ये कराया, फलाने ने ये कराया, सबको पता चल गया। लेकिन वो समय था जब दीदी कहती थी, देखो कोई भी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता है, कोई अच्छा चिंतन है, अच्छे अनुभव है, तो ऐसा न हो उस अच्छाई के पीछे कोई आत्मा फंस जाए, उस पर प्रभावित हो जाए, बाबा को भूल जाएगी, उस आत्मा को ही ध्यान करने लगेगी, ये भाई बड़ा अच्छा है, ये बहन बड़ी अच्छी है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है। तो आपने बाबा से जोड़ा या आत्माओं से जोड़ दिया? जोड़ना किससे है? तो इतना टेंशन एक एक बात का, मैं कहता हूं वो दिन क्या थे, अभी क्या हो गया, अभी हर आत्मा की नाम हो गया, हर आत्मा की महिमा हो गई। लेकिन दीदी के समय कोई क्या एक का भी ये नहीं था कि किसी का क्लास किसी के नाम से लिख के जाना चाहिए। एक बल, एक भरोसा, एक नामी का अवतार हर बात में, कहीं भी हो, साकार बाबा की मुरली ही मुरली है। और साकार मुरली पर इतना टेंशन, एक एक लाइन में प्रश्न बनाती थी, प्रश्न उत्तर, कहती देखो कितनी गहराई है इसके अंदर, चारों सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाए हैं, लोग अव्यक्त मुरली के पीछे लग गए हैं, वो तो बाबा का पाठ चल रहा है, लेकिन जो कुछ पढ़ाना था वो बाबा ने सब कुछ साकार में पढ़ाया है। कोई ऐसी बात नहीं है जो अब साकार ने न बताई हो और अव्यक्त ने उसको अलग से बता दिया हो, वो तो आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए, सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बनाने के लिए अव्यक्त महावाक्य हैं। लेकिन पूरे ज्ञान के इसेंस को बाबा साकार में सुना करके गए हैं। चारों सब्जेक्ट अगर कोई अच्छी स्टडी करे साकार बाबा की मुरलियों की, तो चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है बाबा ने। लेकिन क्या हुआ, उस समय लिखने की जो कहेंगे दीदी के पास या यशु दादी के पास ड्यूटी थी, ये सब शॉर्ट हैंड अपने लिखती थी, नोट्स थे, और नोट्स होने के कारण जब रिपीटेड कोई पॉइंट उनको लगी तो उसको निकाल दिया, इसलिए लगता है मुरली कट है, जंप मार रही है, अभी अभी एक बात है, अभी अभी एक बात है, उसमें दिखाई देता है जैसे सागर की लहरें हैं। लेकिन बाबा ने तो कंटिन्यू मुरली चलाई है। अब उसको मैंने कहा एक बार मैं टाइप करता हूं, कैसेट लेकर के मैंने टाइप किया, तो एक मुरली ही करीब 14 पेज की बनी, 35 मिनट की मुरली, इतना फास्ट बोला है बाबा ने, 34-35 मिनट की मुरली 12-14 पेज की बनाई मैंने। फिर जब मैंने उसको सेट किया, रिपीटेड पॉइंट हटा करके भी सेट किया, तो एक मुरली से दो मुरली बन गई। भेजा एक बार हमने, कहा देखें तो शब्द, कोई भी जरा भी कोई टॉपिक को कट नहीं कर सकता है, टॉपिक वाइज चलाई थी। लेकिन हमारी दादियों के समय, उस समय कोई भी ऐसे साधन नहीं थे, कोई इतनी स्टडी भी नहीं थी, अभी तो कंप्यूटर है, एक शब्द भी अव्यक्त बाबा का मिस नहीं होता, वो जो बोलेंगे सब टाइप हो गया। हम भी जब लिखते थे तो अव्यक्त वाणी को तो हम पूरा लिख लेते थे, लेकिन उसके बाद पार्टियों में कहीं कोई लिखा, कोई छोड़ दिया, उसे मुरली बन गई। लेकिन उस समय केवल नोट्स लिए जाते थे, और नोट्स के कारण साकार मुरली को सबसे अच्छे नोट्स ही सुदादी ही लेती थी, चंद्रास दादा भी लेते थे, लेकिन बाबा को पसंद थे सुदादी के नोट्स, उसी से मुरली बनी है। इसलिए साकार मुरली में भले जंप है लेकिन सब कुछ बाबा ने स्पष्ट किया है, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के उसमें अनुभव है और अनुभव के कारण लगता है कि सहज है, हो सकता है। अव्यक्त बाबा की मुरली तो कईयों को लगता है ये कैसे होगा, ये स्थिति बनेगी, फरिश्ता बनेंगे, संपन्न बनेंगे, लाइट माइट हाउस, ज्वालामुखी, बहुत सारी बातें आती हैं। अब उसके समझने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए थोड़ी कोई कोई को मेहनत लगती है। इसलिए दीदी दादी को बहुत नजदीक से देखा हमने और उनके अंदर बाबा के प्रति इतना प्यार, सब कुछ बाबा का, बाबा के सिवाय और कोई व्यक्ति बीच में ना आ जाए, मैं ना आ जाऊं और कोई भी ना आ जाए, इतना टेंशन रखा। तो ये आत्माएं जिनके अंदर रग रग में बाबा भरा था, मैं का नाम निशान नहीं था, इतनी नम्र चित निरहंकारी बनकर के रहे। तो हम सभी बच्चे भी फॉलो करें, कोई को ना आए, कितना भी आप करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरा भी नाम हो, इसको मारना पड़ेगा। इतने नम्रचित बन जाए कि करण कराओ नार बाबा ने कराया है, जो उसका था उसकी सेवा में हमने लगा दिया, सफल कर लिया, मेरा क्या है। जब इतनी भावना में बाबा बस जाएगा तो मैंपन समाप्त हो जाएगा और नम्रता का अवतार बन जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कई बच्चों को और सब बातों का त्याग करना सहज है लेकिन बुद्धि के अभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। मेरी बुद्धि समझदार है, मेरी बुद्धि प्लानिंग वाली है, मेरी बुद्धि में बहुत अच्छे अच्छे प्लान चलते हैं, सबको समझना चाहिए, मानना चाहिए, होता है थोड़ा अपनी पढ़ाई का, अपने अनुभव का, अपने बड़ेपन का थोड़ा अहंकार अभिमान, वो समाप्त हो जाएगा तो संगठन एक हो जाएगा, सब एक दूसरे से बात समीप आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे और सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसलिए वर्तमान समय हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि सारा कारोबार जो भी यज्ञ का चल रहा है, अभी तो डायरेक्ट ऊपर से चल रहा है, डायरेक्ट बाबा अपना पार्ट, पहले तो अव्यक्त रूप में इतनी पालना दी है, लेकिन अभी ऐसे अनुभव होता है इस लॉकडाउन के अंदर कितने स्टूडेंट बने होंगे, जहां जाओ वहां पर कोई न कोई 10-12-15 तो मिल ही जाते हैं कि हमने तो ऑनलाइन कोर्स किया है, हमने ऑनलाइन मुरली सुनना शुरू किया है, न मधुबन में आए हैं, न सेंटर की बहनों को देखा है, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करके स्टूडेंट बन गए। एक दिन मैं अमेरिका में क्लास करा था यहां से सैन फ्रांसिस्को में, तो बहन कहती है भाई जी आप कुछ इनको बाबा के बारे में, मुरली के बारे में बताओ, 90 भाई बहने लॉकडाउन से निकले हैं अमेरिका में, सबके टेंशन, चारों तरफ से तनाव और सफरी, कोई वर्क में बाहर जा ही नहीं सकते, घरों में बैठे हैं, देखते हैं ये कोर्स है, तनाव मुक्ति का कोर्स है, ये राजयोग का कोर्स है, ये कोर्स है, देख करके ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं देखते हैं तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो सेवा का रूप रंग बदला है लेकिन सेवाएं कम नहीं हुई हैं, जैसे बाबा करा रहा था उससे भी फास्ट स्पीड में सब कार्य हो रहे हैं, हुए हैं। लेकिन देखने में ऐसे आता है, अगर कोई अनुभव करके देखे तो बाबा ऊपर से सारी कारोबार जैसे हैंडल कर रहा है, हर बच्चे को कोई न कोई टचिंग आती है, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। इसलिए वर्तमान समय के अनुसार एक बहुत जरूरी बात जो हम सबके ध्यान पर रहनी चाहिए, हमारी बुद्धि कहीं भी इंगेज ना हो, बहुत स्वच्छ बुद्धि, मैंपन वाली बुद्धि मैली बुद्धि है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, जो कराना होगा अपने बच्चों को टच करेगा और करा लेगा, लेकिन इस बुद्धि में कभी भी ये ऐसे है वो ऐसे है, ईर्ष्या द्वेष नफरत पर चिंतन पर दर्शन, अगर ये इसके अंदर भरा है चल रहा है तो मैली बुद्धि है, और मैली बुद्धि को बाबा अगर कुछ टच भी करना चाहे तो उसको कैच नहीं कर सकता, वो तो इंगेज है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय के अनुसार क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि को बहुत निर्मल रखो, स्वच्छ रखो। बाबा जो आपको कराना है आप कराओ, मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं, बस इस बुद्धि में जरा भी कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं है, कोई उत्तेजनाएं नहीं है, कोई मैंपन नहीं है, वो नम्र चित्त होकर के बैठ जाओ। ऐसे बाबा का आह्वान करो, बाबा आओ और आप ही यहां से सबको दृष्टि दो, आपको जो बुलवाना है बोलो, मैं आपका बच्चा बिल्कुल शांति से बैठा हूं। बाबा आपको यूज करेगा और ये अनुभव हम लोगों को बहुत ही समय हो रहे हैं, बहुत नए नए प्रकार के टॉपिक दे देते, इस पर क्लास करो, इस पर क्लास करो, ऐसे करो ऐसे करो, सोचने लोगों तो 3-4 क्लास अगर कराने हो दिन में। कल मैं परसों आया हूं सिकंदराबाद हैदराबाद से, कल मेरे ऑनलाइन 3 क्लास और एक घंटे के बाद एक, एक घंटे के बाद एक और नई नई टॉपिक। ठीक है, बाबा कराएगा। ऑनलाइन कराने में तो बहुत मेहनत होती है, आप लोग सामने बैठे तो कोई ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है क्या बोल रहा हूं, ठीक है सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे मालूम ही नहीं। लेकिन कल एक जगह पर 350 गीता पाठशाला की माताएं बैठी थी, माताएं भाई थे, गीता पाठशाला चलाने वालों की बट्टी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सब सभा थी 350 की। तो जब यहां से मैं क्लास करा रहा था तो मैंने जानबूझ करके कई प्रश्न पूछ दिए उनसे, देखे सुन रहे हैं या ऐसे ही बैठे हैं। तो अच्छा लगता है, ये भी सेवा का साधन है, रूप बदल गया। लेकिन हमने कहा देखो इससे खर्चे बच गए, भाग दौड़ बच गई, समय बच गया, वहां से फूल ऐसे पकड़ाते हैं आपको हम गुलदस्ता दे रहे हैं, ठीक है आपका गुलदस्ता हमने स्वीकार कर लिया फूल की टोकरी, फल की टोकरी दिखाते हैं ऐसे, आ गया फल हमारे पास तो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये बाबा की सेवाओं का बदलता हुआ रूप है और ये सब प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा, ये साइंस शायद ये बाबा की सेवाओं को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएगी। क्योंकि जितना इंटरनेट, जितना मैं समझता हूं ब्रह्मा कुमारी जी ने यूज किया होगा, उतना दुनिया में कोई नहीं यूज किया होगा। सब जगह देखो यूट्यूब पर मुरली चल रही है, इधर ऑन करो तो ये मुरली आ रही है, वही एक बाबा की मुरली सब जगह छोटी छोटी बहनें सुना रही है और यूट्यूब पर आ रही है सबकी। नया कमाल कर दिया बाबा, कोई खोल के देखेगा कहेगा अरे तो सारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये सब साधन बाबा की सेवा के निमित्त बनेंगे, ये सब बाबा की प्लानिंग है, भिन्न भिन्न रीति से कर रहा है। ये कोरोना काल, ये काल आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, हम कहते परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए डरो नहीं, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, बाबा जैसा चाहता ऐसी अपनी स्थिति बना करके रहो। बस अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए केवल स्थिति ही काम आएगी, न धन काम आएगा, न संबंध काम आएंगे, न कोई सेवाएं काम आएंगी। जिसने अपनी अच्छी स्थिति बनाई है हर बात में बिल्कुल अच्छा लडोल एक रस, और उसके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात हो ही नहीं रही है ड्रामा के अंदर, मैं प्रश्न क्यों करूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, बाबा ने अपने बच्चों को बिल्कुल इन बातों से निर्संकल्प रहना सिखाया है। ये सब गॉड्स प्लान है, इतने निश्चय के साथ आप बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहो और बहुत स्वच्छ साफ दिल से बाबा कहो और बाबा आपके साथ हाजिर हो जाए, उसका अनुभव करो कि बाबा मेरे साथ साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, साथ साथ चल रहा है, करा रहा है, कराने वाला वो है, मुझे आता ही कहां है, वो करा देता है अपने आप, मुझे क्या आता था। और इतना सरल भाषा में ऐसे लगता है सचमुच बाबा का साथ अनुभव होता है, बैठा है ब्रकुटी के बीच में, कितना जगह चाहिए उसको, कहता है बच्चे त्रिमूर्ति बन करके रहो, मैं त्रिमूर्ति हूं तो तुम बच्चे भी त्रिमूर्ति हो। माता है त्रिमूर्ति हो, कैसे हो कैसे हो, यहां बाबा बैठा है, इधर शिव बाबा, इधर ब्रह्मा बाबा, त्रिमूर्ति बन जाओ, बाप दादा तो कंबाइन है लेकिन थोड़ा अलग करके बीच में बैठ जाओ बच्चा बन करके। इतना सुंदर अनुभव होता है जैसे बाप दादा दोनों इतनी बड़ी अथॉरिटी, दोनों समान है। बहुत प्यार से बाबा कहा और बाप दादा का अनुभव करने लगे। एक पवित्रता का, सर्व शक्तियों का भंडार है, सागर है। एक बाप है, एक माँ है, उसके बीच में मैं बच्चा हूं। अगर इस तरह से बहुत सुंदर अनुभव करके योग करो तो आपको परम धाम जाने की, सूक्ष्म तन जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा अपने आप ऊपर से आकर के आपके भ्रकुटी पर बैठ जाएगा। अब इतनी सच्चाई, इतनी सफाई अंदर की, जरा भी कई किसी भी प्रकार का मैंपन नहीं, इस मैंपन का त्याग। तब इतनी सरल नेचर अगर बन जाएगी तो बाबा आपके पास आएगा, साथ का अनुभव कराएगा और जो कार्य कराना है अपने आप टच करके करा लेगा। तो बाबा कहता, मैं तो टच करता हूं लेकिन मेरे बच्चे कभी कभी कैच नहीं करते, इंगेज करके रखते हैं बुद्धि को। इसलिए सब अपनी बुद्धि को बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ, साफ ऐसे बना करके रखो, बाबा आपका ये संगम पर पार्ट चल रहा है और आपके पार्ट में मेरा यही योगदान है कि मैं आपका राइट बच्चा बनकर के रहूं। जो आपको कराना है करा लो, स्थापना के कार्य में जहां जरूरत है मुझे यूज कर लो बस। तो ऐसे बहुत नम्रचित बन करके, मैंपन का त्याग करके बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। बहुत बड़ा स्थापना का कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। लेकिन बाबा के साथ दादियां अभी सब पावरफुल पहुंच गए हैं और इस कार्य में अभी फास्ट गति आ रही है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। क्या होगा संपन्नता में? तीन चीजें होंगी, टॉपिक है ना, चलो संपन्नता की ओर। तीन चीजें होंगी संपन्नता में। एक तरफ बाबा का नाम वाला होगा, जय जयकार होगी, यही है यही है यही है, सबकी नजरों में आ जाएगा। और जब जय जयकार होगी, नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी, तो कई आत्माओं को पश्चाताप भी होगा जिन्होंने अलबेलेपन में, भगवान आया है, संदेश मिला है, परिचय मिला है, लेकिन अलबेली रही, पुरुषार्थ नहीं किया, किसी कारण से डिस्टर्ब रहे हैं, डिस्टर्ब किया है, विघ्न रूप बने हैं, वो पश्चाताप करेंगे। लेकिन बाबा कहता है, मैं रहम दिल हूं, दयालु हूं, कृपालु हूं, मैं बच्चों का पश्चाताप भी नहीं देख सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये तीनों साथ साथ चलेंगे। जब संपन्न आत्मा बनेगी तो एक तरफ जय जयकार होने लगेगी, एक एक से बाबा का दर्शन होने लगेगा, साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। आप किसी को भी ऐसे दृष्टि देंगे उसको स्वर्ग का अनुभव होने लगेगा, उसको श्री कृष्णपुरी के दर्शन होने लगेंगे, वो अपने आप को भूल जाएगा, प्रतिष्ठा होने लगेगी। और दूसरी तरफ फिर जिन्होंने अलबेलापन में, विकारों में अधीन रहे हैं, नहीं समझ पाए श्रीमत में, मनमत मिक्स की, वो पश्चाताप तो जरूर करेंगे। लेकिन पश्चाताप की सीन ज्यादा नहीं चलेगी, परिवर्तन। तो ये तीनों चीजें संपन्नता की निशानियां होंगी, प्रत्यक्षता माना जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार और तीसरी तरफ परिवर्तन। तो भी वो समय दिखाई दे रहा है, बहुत समीप है। हम सब अपने आप को बाबा जैसा बनाना चाहता है ऐसा बन करके दिखाएं। तो आपको भट्टी का चांस मिला है, आज पहला दिन है। आप सभी तीन दिन में खूब अच्छी तपस्या करके, सब बातों से न्यारे बन करके, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को उसी रूप में देखना, अनुभव करना और त्रिमूर्ति बन करके चलना। ठीक है, चलते फिरते अनुभव करना कि बाप दादा मेरे साथ हैं, वो मेरे भ्रकुटी आसन के समीप हैं और मैं बच्चा उनके बीच में बैठा हूं। इससे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा आपको कराएगा। चलो समय हुआ है, हम आधा घंटा इसी अनुभव में बैठे हैं। बाबा का आह्वान करो और अनुभव करो कि जैसे मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठा हूं, उनकी दिव्य शक्तियां जो पवित्रता की शक्ति है, शांति की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। अब दोनों आत्माएं समान हैं, दोनों की शक्तियां मुझ आत्मा को चार्ज कर रही हैं। मैं उनके समान बनती जा रही हूँ, इस अनुभव में बैठ जाओ। ओम शांति।